विषय है मानव जन्म और ईश्वर। मानव जन्म किस वास्ते मिला है? मानव जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सुमरण कारण यह दुर्लभ जीवन है। इस मानव जन्म की सफलता कब है? जब प्रभु इस चित्त में, इस बुद्धि के अंदर आ जाए या बस जाए। इसलिए प्रभु के सुमरणकार ने यह दुर्लभ जीवन पाया। ये मानव जन्म साधारण जन्म नहीं है, ये दुर्लभ है, किसी किसी को मिलता है। इसलिए इसका जो कर्म है वो भी दुर्लभ है। क्या? प्रभु का सुमरण, प्रभु की भक्ति। यदि हम ना करें प्रभु भक्ति, सांसारिक जीवन ही व्यतीत करें तो क्या हो जाए? तो दो योनियां होती हैं, एक तो हम मानव योनि कहते हैं, एक दूसरी योनि होती है पशु पक्षियों की योनि। मानव जीवन यदि मैंने ठीक से व्यतीत नहीं किया तो डेथ के बाद मुझको मानव देह नहीं मिलेगी, फिर कर्मानुसार कर्म फल अनुसार पशु पक्षी की देह मिल जाएगी। तो इसीलिए ये बड़ा अच्छा जन्म भी है और वास्तव में बड़ा डेंजरस भी है। डेंजरस क्यों है मानव जन्म? क्योंकि इसमें यदि आपने अपने बारे में सही विद्या नहीं सीखी तो फिर जो आप सामाजिक जीवन, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हो मानव जन्म लेकर, उसमें क्या दोष आ जाए? मनुष्य जन्म लेकर हम जो कुछ भी सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं साधारण रूप में, जिसको हम आमतौर पर गृहस्थ जीवन कहते हैं, इसके अंदर मनुष्य के अंदर पांच विकार का विकास ऑटोमेटिकली होने लगता है। जिसको कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मैं अपने बच्चों का पालन कर रहा हूं, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। लेकिन बच्चों के बारे में इतना चिंतित रहता हूं, उनके विकास के बारे में इतना चिंतित रहता हूं, कई बार तो मैं अपने को ही भूल जाता हूं। तो उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखना, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन उनके बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना, खुद लक्ष्य बनाना और उनके ऊपर थोप देना, ये क्या है? ये मोह है, मोह विकार है। ऐसे ही परिवार पालन के लिए मैंने पैसा कमाना है, पैसे की जरूरत है, उसके बिना तो पलेगा नहीं। लेकिन मैंने बिजनेस किया या सर्विस की और पैसा कमाया, मेरा काम चल रहा है, लेकिन मैं देखा देखी प्रगति करता हूं, फिर मैं और पैसा कमाता हूं, फिर और प्रगति करता हूं, क्योंकि सारा संसार प्रगति कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो मैं पैसे की प्रगति कर रहा हूं ये तो विकार है। तो अध्यात्म विद्या कह रही है ये तो लोभ है, तेरे अंदर पैसे का, वस्तुओं को इकट्ठी करने का ये लोभ बढ़ रहा है। तो पांच विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमार्थ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तार। मैं जीव हूं, इस देह की मौत के साथ मेरी मौत नहीं होगी। मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, मन बुद्धि भी देह के साथ नष्ट नहीं होती है। इसीलिए मन बुद्धि के साथ ही मैं बच जाता हूं और मेरी नई देह मुझको मेरे कर्मों के अनुसार प्रदान कर दी जाती है। अब बताइए, जिसकी मौत ही नहीं है उसने सोचना है कि मैं कौन सी कमाई करके जाऊं ताकि अगला जन्म मेरा इससे बेटर हो, इससे अच्छा हो। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रभु के सिमरणकार ने ये दुर्लभ जीवन पाया। इसमें आपको बुद्धि दी गई है, महाजी कहते थे प्रेमी बुद्धि में जागरूकता बहुत है। तो मानव जन्म में तू इस बुद्धि का सदुपयोग कर सकता है। और प्रभु के गुण क्या है? प्रभु आनंद रूप है, शांति रूप है, और संसार सुख रूप है और दुख रूप है। हर सुख दुख में बदल जाता है, हर दुख सुख में बदल जाता है। ये द्वंद रूप संसार है, ये इंटरचेंज होता ही रहता है, ये प्रकृति का सिद्धांत है, इसलिए इसको द्वंद रूप जगत कहते हैं। यहाँ कोई भी चीज स्थिर रह ही नहीं सकती, एक अवस्था आएगी फिर वो बदल जाएगी। जवानी आती है तो बढ़ापा आ जाता नहीं आता, स्वास्थ्य है तो रोग आ जाता नहीं आता, जन्म है तो मौत आ जाती नहीं आती, हर चीज का यहाँ द्वंद्व मौजूद है। तो इसीलिए इस द्वंद्व में तू निर्द्वंद्व कैसे रह सकता है? तो ये युद्ध सारी जिंदगी चलता रहेगा, कोई तेरा बचाने वाला नहीं है, कोई तुझको समझाने वाला नहीं है। यदि कोई समझाने वाला है तो केवल एक गुरु है या अवतार है जो संसार में हमारे कल्याण के वास्ते प्रकट होता है, हमारे बीच आता है। तो मनुष्य भी सही समझ सकता है तो किसके द्वारा समझे? उस गुरु के द्वारा ही समझ सकता है जो संसार में आया है। लेकिन समस्या यह है कि गुरु का मिलना साधारण नहीं। एक बार महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी आप ही सर उत्तर भारत में हैं, क्या दूसरा भी कोई गुरु इस समय भारत में मौजूद है? बोले हाँ दूसरा मौजूद है। बोले महर्षि रमण दक्षिण में। अब बताइए कि महाराज जी की प्रेजेंस में केवल दूसरा एक गुरु अवेलेबल था, इसका नाम उन्होंने बता दिया। सतपुरुष त्रिकालदर्शी होता है, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में कुछ भी बता सकता है क्योंकि वो ईश्वर है। देखने में वो मनुष्य है, उसका चोला मनुष्य का है लेकिन है वो ईश्वर, इसलिए वो सर्वज्ञाता होता है, उसको पूरे संसार का कोई बंधन नहीं होता। नहीं तो अर्जुन को कृष्ण युद्ध में सारा दृश्य कैसे दिखा सकते थे? वो सर्वसमर्थ है। कोई भी अवतार, कोई भी सदगुरु यदि वास्तविक है तो वो सर्वसमर्थ है। तो इसीलिए समस्या ये होती है कि जब गुरु एक बार में एक दो अवेलेबल हैं, अब देखे उत्तर में महाराज जी हुए, दक्षिण में महर्षि रमण हुए, पूर्व में रामकृष्ण परमहंस हुए, अलग अलग समय में हुए, और उनका मार्गदर्शन अवेलेबल है, उनका लिटरेचर अवेलेबल है, उनके शिष्य भी अवेलेबल हैं। तो गुरु के प्रति जब तक आपकी कहीं आस्था नहीं बनती, उसके प्रति आपके मन में विश्वास नहीं आता, तो किसकी बात मानकर चलोगे? तो इसीलिए मानव जन्म लेकर ईश्वर से आपका संबंध बनना ही चाहिए। लेकिन बने कैसे? सब जानते हैं कि ईश्वर अंतर्यामी है। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, आरती गाते हैं तो ये गाते नहीं गाते? ईश्वर अंतर्यामी है और गुरु बाहर है। लेकिन वो बाहर शरीर रूप में है जरूर, लेकिन है वो ईश्वर जो अंतर्यामी ईश्वर है, वही बाहर अवतार के रूप में प्रकट हुआ। इसीलिए मेरा अंतर्यामी ईश्वर से संबंध नहीं बन सकता, संबंध तो मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य से ही मेरा संबंध बनेगा। इसीलिए मनुष्य को यह कहा जाता है कोई तो गुरु धरा। हम गुरु के नाम पे फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, किसी को भी गुरु बना लिया ये हमारे गुरु। गुरु केवल होता है इसलिए गुरु को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। वो मोक्ष प्राप्त कर चुका है फिर भी हमारे मार्गदर्शन के लिए शरीर में मौजूद है। जैसे कृष्ण को राम को कुछ चाहिए था क्या? वो हमारे लिए ही तो संसार में विचरते थे, शरीर उनका लीला घर था, लेकिन उद्देश्य उनका हमारा मार्गदर्शन करना। इसीलिए मनुष्य को ये कहा जाता है कि मानव जन्म लिया है तो कहते हैं बिना विवेक मनुष्य जो हो पशु समान जीवन सो को। यदि तेरे अंदर अपने बारे में विवेक ही नहीं है कि मैं कौन हूं, ईश्वर क्या है, ईश्वर से मेरा क्या संबंध है, ईश्वर कैसे मिलेगा, ये सारा विवेक ही तो है। यदि ये विवेक की मैं जरूरत ही नहीं समझता, सारी जिंदगी बच्चे पालता रहा, अपने भोगलास इकट्ठा करता रहा, मकान ही बनाता रहा, तो वो तो ये तो पशु से भी निकृष्ट जीवन हो गया। क्योंकि पशु एक भी पाप नहीं करता क्योंकि वो कर्मयोनि है, उसको बुद्धि दी ही नहीं गई, मुझको बुद्धि दी गई है कि मैं बुद्धि का उपयोग करके ईश्वर बन सकता हूं, लेकिन यदि नहीं बनता ईश्वर और संसार से निकल करके मैं सुख प्राप्ति के लिए जीता हूं, याद रखिए मैं पांच विकार का जीवन ऑटोमेटिकली जी रहा हूं, क्योंकि मुझको उसका विज्ञान का पता नहीं है, अध्यात्म विद्या मैंने पढ़ी नहीं, इसलिए धोखा खा जाता हूं, मैं ठीक ही चल रहा हूं। इसीलिए वो कहते हैं कि पशु समान जीवन सो, उसने जीवन पशु की तरह खो दिया, कुछ कराया नहीं उसने, बल्कि उल्टा हुआ, तू पाप करके यहां से विदा हुआ, मनुष्य जन्म भी तेरा छन गया, तू पशु योनि में प्रवेश करेगा, तो तेरा पतन हुआ, तू बड़ा अमीर बना, फायदा क्या हुआ। इसीलिए जब तक पूर्ण गुरु हमारे जीवन में नहीं आता, हम गलतियां करते ही रहते हैं, बड़े भाग्य से ऐसी संगत मिल जाती है, बड़े भाग्य से, जिस संगत में जो लोग हैं वो एक पूर्ण गुरु के शिष्य हैं या पूर्ण गुरु को फॉलो करने वाले, उस संगत के माध्यम से मुझे गुरु का पता लगता है, गुरु क्या होता है इस बात का पता लगता है, उसके शिष्यों का जो जीवन बीतता है उनके उनके शिष्यों के जीवन से पता लगता है। अब देखिए महाजी बरेली में आए, सन 51 दिसंबर की बात, तो मेरे पिताजी संत शरण जी वो ट्रेजरी में तहसील ऑफिस में रेवेन्यू अकाउंटेंट थे, ब्रिटिश पीरियड था उससे, तो एक दिन जब ये पार्टीशन हो गया तो वहां से एक महाराज जी के शिष्य उन्हीं के ऑफिस में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, सिक्का जी थे वो उत्तम चंद सिक्का, तो बड़ा सादा सा जीवन था, तो पिताजी से बात होती रहती होगी आपस में, क्योंकि पिताजी भी अध्यात्म पे राही थे, वो भी अध्यात्म पे राही थे, तो पता लगा कि उनके गुरु हैं, वो सारा विवरण बताया उन्होंने, पाकिस्तान में वो थे, वो भी इधर आ गए हैं, तो पिताजी भी क्योंकि आध्यात्मिक थे, शिव के उपासक थे पिताजी, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि भाई किसी प्रकार उनको यहाँ बुला लो। खैर उन्होंने कोशिश करी तो महाराज जी बरेली आ, जब बरेली आए तो जहाँ ये शुगर फैक्ट्री है इसके पार राधे श्याम का बाग है, वहां उनको ठहराया गया, तो पिताजी कह रहे थे, जब मैंने उनसे पूछा कि जब महाराज जी आए हैं उससे 2 दिन पहले मैंने एक स्वप्न देखा, स्वप्न क्या देखता हूं, मैं जंगल में बैठा हुआ हूं और भगवान का भजन कर रहा हूं, अचानक सामने एक लाइट जो है वो प्रकाश उत्पन्न हो गया थोड़ी दूर पर, फिर धीरे धीरे प्रकाश प्रकाश वो मेरी तरफ आने लगा, जब मेरे पास आया तो मैं क्या देखता हूं कि बैल पर शंकर पार्वती बैठे हुए, जब वो मेरे पास आए तो हमारे सिर पे हाथ रखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके एक दिन फिर बाद महाजी ने हमको दीक्षा के लिए उसी स्थान पर बुला लिया जहां वो ठहरे हुए थे, तो महाजी मेरे सामने थे जब दीक्षा उन्होंने दी, उसके पश्चात मेरे मन में कोई भ्रम रहा ही नहीं, वही शिव है ये जो आज गुरु में आए हैं मेरे सामने और ये दीक्षा दे रहे हैं। तो देखिए प्रभु क्या लीला करते हैं, प्रभु ही आपको चुनते हैं, आप गुरु नहीं छाड़ सकते, आपके पास ना वो अकल है ना वो आर्ट है, गुरु ही याद रखिए गुरु ही शिष्य को चुनता है, प्रैक्टिकल फैक्ट है, इसीलिए वही ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा, वही आपको विश्वास देगा, नहीं तो आपको विश्वास ही नहीं आएगा, कोई ना कोई डाउट करते रहो। तो पिताजी ने कहा कि जब महाजी ने दिशा दी मुझे कोई डाउट नहीं रहा कि ये खुद शिव आए हैं मेरे सामने और मुझको दीक्षा देकर आए। ऐसे देखिए बरेली में सन 53 की बात है, महाजी दोबारा आए घर, तो डॉक्टर भीमसेन जी ओबरा है उनको पता लगा, इसने बताया होगा, तो उस समय महाजी आए थे सिटी इम्प्रूवमेंट पार्क जो है ये प्रेम नगर में, ये यहाँ संत योग आश्रम के सामने सिटी इम्प्रूवमेंट पार्क है, इसके हॉल में वो ठहरे थे, तो सुबह सुबह 8 बजे का टाइम होगा, भीमसेन जी अपना घर से आए और जब पार्क में उन्होंने एंटर किया, मैंने उनका उनके संस्मरण नोट कर रहा था, तो मैं उनके संस्मरण रिकॉर्ड कर रहा था, उस समय उन्होंने मुझको बताया ये बात कि महाराज जी मैंने क्या देखा, जैसे मैं पार्क के गेट में एंटर किया, महाराज जी कुएं के पास खड़े हुए हैं। उस समय जब जंगल से आते थे वो तप करके रात का, तो भगत जी उनको स्नान करा देते थे, उन्होंने होस्ता उस समय स्नान कराया और सफेद वस्त्र महाराज जी पहनते थे। बोले कि महाराज जी सफेद वस्त्र में खड़े हुए थे, जब मेरी निगाह पड़ी तो मैं क्या देख रहा हूं, ये तो बड़ा विशालकाय शरीर है सफेद वस्त्र में खड़ा हुआ। अब गेट से मैं जैसे जैसे उनके पास जाने लगा, उनका साइज छोटा होने लगा, और जब मैं उनके पास पहुंचा, जब उनके चरण छुए तो नॉर्मल साइज के। अब उनके अंदर क्या ख्याल आया, ओह ऐसे ही कृष्ण ने विशाल रूप दिखाया होगा अर्जुन। खैर कोई बात नहीं, महाराज जी के पास अंदर बैठे वो कुछ वार्तालाप चला, वार्तालाप में कुछ उन्होंने भीमसेन जी ने कुछ बात कही होगी, तो महाराज जी ने कहा प्रेमी हाजिर कृष्ण जो कह रहे हैं उसको सुन, कुछ तर्क कर रहे होंगे। देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं, हाजिर कृष्ण जो कह रहा है उसको सुन। तो उनके अंदर पक्का निश्चय हो गया ये कृष्ण ही हैं जो मंगल के रूप में आ रहे हैं। देखिए वो विश्वास कौन दिलाएगा, गुरु ईश्वर है और गुरु सौभीष नहीं होते। महर्षि रमण ने खुद कहा गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। शरीर रूप में कितने अवतार हुए हैं, कितने गुरु हैं, लेकिन केवल एक ही परमेश्वर है जो विभिन्न रूपों में हमारे मार्गदर्शन के लिए आ रहा है, हमको गाइड करने के लिए आया है, शास्त्रों की रचना करके जा रहा है। तो वो प्रभु जो अंतर्यामी है मेरे लिए शरीर रूप में बाहर आ रहे हैं, फिर बाहर आकर हमको बता रहे हैं कि मैं अंतर्यामी हूं। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अहम आत्मा बुढ़ाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं, हृदय देश है अर्जुन की स्थिति, मैं तेरे हृदय में स्थित हूं। अब बताइए कृष्ण गीता के द्वारा संदेश दे रहे नहीं दे रहे, तो मैं किसकी बात मानता हूं, जो शास्त्र की लिखित बात है, जिस कृष्ण में मेरा विश्वास है, जिसकी उपासना करता हूं, वो तो घर मेरे अंदर हूं। तो इसीलिए जो भी वास्तविक गुरु होगा वो आपको अंदर की साधना ही सिखाएगा, अंदर जाने का रास्ता ही बताएगा। तो जो आप अपनी वासना सत्पुरुषों के दर्शन करके पूरी करना चाहते हो, ये वासना आपको बाहर ले जाती है या अंदर ले जाती है। इसलिए गुरु आपको वासना पूरी करने का रास्ता कभी नहीं बताएगा, जो वास्तविक गुरु होगा वो आपकी वासना पूर्ति का रास्ता कभी नहीं बताएगा, वो वासना त्याग का रास्ता बताएगा, ईश्वर दर्शन का रास्ता बताएगा, तेरे मन की बेचैनी दूर करने का रास्ता बताएगा, वो अंदर जाएंगे। अब देखिए रामकृष्ण परमहंस साधारण से आदमी थे, उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, एक वाक्य कहा था, गुरु का स्वप्न में दर्शन होना ये सच्चा स्वप्न होता है। गुरु का जो पूर्ण गुरु, हमने किसी को गुरु बना भी लिया, उसका दर्शन स्वप्न दर्शन तो उसका नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पूर्ण गुरु की बात हो रही, ब्रह्म ऋषि की बात हो रही, जो अवतार है, गुरु का स्वप्न में दिखाई पड़ना ये सच्चा स्वप्न होता है। अब बताइए इसका प्रमाण, मुझको इसका प्रमाण अपने परिवार में मिला, वो मैं आज आपको सुना देता हूं। मेरी छोटी बहन है, दो बहनें हैं, उसमें छोटी बहन जो है उसकी लड़की का विवाह शहर से बाहर दूसरे शहर में हुआ, और दुर्भाग्यवश जो उसकी यंग एज थी, हार्ट अटैक से उसके पति की डेथ हो गई। मैं जब उस डेथ के प्रोग्राम को अटेंड करने गया, उसके पश्चात सारा काम प्रोग्राम जब खत्म हो गया तो वो मेरे पास आई, बोले मामा जी अब मैं कैसे जीऊंगी, आप मुझे बता के जाइए मैं क्या करूं। तो मैंने कहा इस हालत में तुझे क्या बता सकता हूं, कुछ दिन बाद मेरे पास आना बरेली, तब फिर बात हो। फिर भी मैं कभी कभी टेलीफोन से बात कर लेता था, कुछ महाराज जी का जैसे लिटरेचर है, महाराज जी की जीवनी भेज दी, महाराज जी के प्रश्नोत्तर की किताब भेज दी, कुछ ना कुछ उसको भेजता रहता। तो धीरे धीरे उसको महामंत्र भी याद हो गया, महामंत्र का जाप भी उसने शुरू कर दिया, महाराज जी के प्रति उसकी श्रद्धा पूरी गहरी हो गई। वक्त बीतता रहा, एक दिन की बात है, मैं तपोभूमि में वर्ष में एक बार एक महीने के लिए तप के लिए जाता था। मैं तपोभूमि एक महीने गया हुआ था, वहां पर उसका फोन आया, बोले मामा जी मुझे सोमराज जी से मिलवा दो। सोमराज जी महाराज के शिष्य थे, सबसे योग्य शिष्य थे, सारे शास्त्रों की ज्ञाता और अध्यात्म मार्ग में भी काफी एडवांस स्थिति थी। मैंने कहा ठीक है मैं मिलवा दूंगा, लेकिन अचानक तो मैं दिल्ली जा नहीं सकता, तो तुम रिजर्वेशन करा लो, मैं बरेली जब आऊंगा तब उन्हीं से तब तुमको ले चलूंगा। तो मैं उनको ले गया। फिर तो हुआ क्या था, क्योंकि महाराज जी के प्रति श्रद्धा उसकी गहरी हो गई और संसार से जो लगन थी उसकी वो टूट गई। उसके मन ने, उसकी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि संसार तो ये रहने की जगह ही नहीं है, तो दुख रूप। जब संसार से मन उखड़ गया किसी व्यक्ति का और सतपुरुष में उसकी श्रद्धा है, तो वो किसको याद करेगा, विचार कर गया, संसार से तो सपना टूट गया, गुरु पर श्रद्धा बनी हुई है तो गुरु को ही तो याद करेगा। तो मैंने इससे पूछा सोमराज जी को तो तुम जानते भी नहीं हो, तुमने कभी देखा भी नहीं, उनका फोटो तक नहीं देखा, तो सोमराज जी के पास जाने की बात कैसे कह रहे। तो उसने कहा कि मुझको स्वप्न में महाराज जी आए थे और एक व्यक्ति खड़ा था, उसकी ओर इशारा करके इन सोमराज जी के पास तुम जाना। ये बात है बुरी, मैंने सुन ली बात, स्वप्न देख लिया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर एक दिन स्वप्न आया, फिर वैसा ही स्वप्न, वही बात, सोमराज जी को दिखाया जा रहा है, तुमने सोमराज जी के पास जाना। फिर भी बोली पता नहीं क्या है, क्योंकि जिसने शास्त्र पढ़े नहीं, इस मार्ग पे चला नहीं, तो समझ ही नहीं आती, उलझन हो जाती इसके लिए। फिर तीसरी बार स्वप्न आया, फिर वही स्वप्न, सोमराज जी उठा, तुम सोमराज के पास जा। तब मैं जब ले गया सोमराज जी के पास दिल्ली, सामने पर सोमराज जी बैठे थे, हम दोनों दूसरी साइड में बैठे थे, तो सोमराज जी ने उससे प्रश्न किया, तुम ये बताओ महाराज जी ने जो शक्ल मेरी तुमको दिखाई थी, अब जो तुम मेरी वास्तव की शक्ल देख रही हो, दोनों में क्या अंतर है। तुम्हें आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी महाराज जी ने शक्ल दिखाई। अब आप बताइए, ये लाइव एग्जांपल है जो रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि गुरु का स्वप्न में दिखाई पड़ना ये सच्चा स्वप्न होता है, ये प्रैक्टिकल प्रमाण है। तो सतपुरुष हवाई बातें नहीं करते, सतपुरुष की बात में बड़ी गहराई होती है, उनकी बातों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, उनके शास्त्रों पर भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। हमको लेट समझ में आते कि वो बात सही करते। एक और ये पारिवारिक एग्जाम्पल है, क्योंकि मेरे सामने खुद ही प्रूफ है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं, ताकि गुरु के प्रति श्रद्धा का होना क्यों जरूरी है, वो भी पूर्ण गुरु के प्रति, क्योंकि उसके बिना ईश्वर की भक्ति आगे आगे बढ़ ही नहीं सकती है। पता नहीं कितने वह मांगे, कहां कहां अटकोगे, पता ही नहीं लगेगा। इसलिए पूर्ण गुरु का आश्रय जब मिलता है तो सारे मार्ग का आपको पता लग जाता है। एक बार मेरी पत्नी बीमार पड़ी, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया, लगभग 6 साल पुरानी बात हो गई, तो क्या हुआ, दवा इलाज चल रहा था उनका, एक दिन रिएक्शन हो गया उनको दवा का, तो एसआरएम से उनको भर्ती कराना पड़ा। जब भर्ती करा दिया तो 3-4 दिन हो चुके थे भर्ती हुए, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा महाराज जी का एक फोटो इनके रैक पर मैं रख देता हूँ, क्योंकि उनके जहाँ वो पूजा करती थी या बैठती थी वहाँ महाराज का एक छोटा फोटो रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि और उनको महाराज जी से था बड़ा प्रेम, प्रेम ऐसा था कि जब आश्रम में सत्संग होता था मैं जब बोल रहा हूँ तो बाई चांस कोई किसी दिन ऐसा हुआ कि महाराज जी की कोई बात ही नहीं आई सत्संग में, तो घर जाके मुझसे कहती थी आज आपने सत्संग अच्छा नहीं किया। मैंने कहा क्या हो गया, सत्संग तो बड़ा अच्छा था, बोले महाराज जी की बात तो आई नहीं। अब देखिए कि गुरु के प्रति जब भाव अंदर पैदा होता है साधारण व्यक्ति के अंदर, बिल्कुल साधारण थी, तो कैसे पकड़ लेता है इसको। तो जब मैंने फोटो रख दिया कोई बात, उसके बाद अगले दिन की बात है या उसी दिन शाम की बात है ये मैं भूल रहा हूं, क्या हुआ उनका उनकी मेमोरी को डिस्टर्ब हो गई कुछ। तो डॉक्टर रिपोर्ट किया, डॉक्टर जब आया उसने मेरे सामने पूछा आपके कितने बच्चे हैं, तो बोली 2-3 हैं, 2 बच्चे हैं। कोई माँ कभी कहेगी 2-3 इसका मतलब मेमोरी डिस्टर्ब। फिर उन्होंने पूछा इनका नाम क्या, हमको पता है इनके पति हैं, मेरा नाम भी नहीं बताते है, वो समझ गए फिर वो चले गए। फिर मैंने उनको चेयर पे बिठाया, मैंने कहा ऐसा है वो महामंत्र का जाप करते थे, मैं महामंत्र बोल रहा हूँ मेरे साथ तुम भी बोलो, एक बार बोलना है पूरा। तो मैंने कहा मैं बोलता रहा ओम ब्रह्म सत्यम, मेरे साथ बोली बोलती रही। 3-4 बार बोलने के बाद मैंने अपनी आवाज स्लो कर दी और 5 बार बाद मैं साइलेंट हो गया, वो पूरा मंत्र उन्होंने बोल दिया, 3 अक्षर का पूरा मंत्र बोल लिया और एक बार नहीं बोला, क्योंकि ज्यादातर वो 5 बार पढ़ती थी महामंत्र को, 5 बार बोलकर साइलेंट हुई। परमेश्वराय नमस्तम, परमेश्वराय नमस्तम, परमेश्वराय नमस्तम, 3 बार बोलकर बिल्कुल करेक्ट। मैंने कहा ये क्या है, मेरा नाम नहीं पता इनको, इनके बच्चे कितने हैं कि ये नहीं पता, ये क्या चीज है अंदर, ये कैसे करके आ रहा है तलम मामा। कोई बात नहीं, मैं किसी काम से गया हूँ, घर से वो ट्रॉली आई उनको लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए, उनको साथ वो बड़ी घबरा है, मैं था नहीं, पता नहीं कहाँ ले जा रहे मुझे, मेरे ऊपर तो कॉन्फिडेंस था, मैं जब था नहीं तो उनको घबराहट हुई। तो ये सारी बातें मैंने जब वो ठीक होकर घर पहुंच गई थी तब पूछी थी उनसे, मैं तब उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि मुझे क्या पता इस बात। तो बोली जब आप नहीं थे और वो उनको नर्स मुझे ट्रॉली पे ले जा रही थी तो मैं बहुत घबराई, बहुत डरी थी। तो क्या हुआ, बोली महाराज जी मेरे साथ चलने लगे, और रास्ते में जब गैली में ले जा रहे थे तो मैं मन में सोच रही थी महाराज जी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगा। तो टेस्ट जब करा लिया उन्होंने तब उनको छोड़ा, और उनको याद क्यों तेज रही, बोली कि जब आपने फोटो रखा था उस दिन उनके देखकर मैं इतना रोई थी, उनको देखकर जिससे प्रेम है उसकी याद तो आएगी, उससे प्रार्थना भी करेगा इंसान कुछ ना कुछ, कि उसका दर्द जो प्रिय है आपका वो दर्द भी तो बांटेगा ना आपका, इसलिए इंसान होता है। तो ये सीधी साधी थी, बिल्कुल सहज प्रक्रिया थी, ये क्या है, ये मेरे ही मन का संकल्प है। यदि शुद्ध संकल्प है तो देखो प्रभु ऐसे लाइव आपके साथ जो है सहायता करते हैं। और डॉक्टर ने कहा था आखिरी, क्योंकि ट्यूमर कैंसर का कैंसर था वो, तो डॉक्टर ने कहा था मुझको कि इनके लाइफ के आखिरी 7-8 दिन ऐसे होंगे, इतना पेन होगा इनको कि ये इनकी सेंसेस फेल हो जाएंगे। और देखिए उनका सब फाइनली ट्रीटमेंट का बेंगलोर में हुआ और आखिरी दिन भी आ गया, लेकिन पूरे टाइम आखिर तक डेथ पॉइंट तक एक बार भी उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि मेरे दही पर बेन हो रही। और लास्ट में एंड पॉइंट था तो मेरी आवाज भी नहीं पहचान नहीं थी, तो क्या हुआ, मेरे मोबाइल में महाजी का फोटो था, मैंने फोटो रख के उनकी आँख की पुतली ऊपर चढ़ी हुई थी, आधी चढ़ चुकी थी, मैंने फोटो उनके आँख के आगे रखा, पुतली नीचे आई, करीब 10 सेकंड तक उन्होंने स्टेबल रही, देखा, दर्शन किया, फिर पुतली वापस आई। तो लास्ट में भी गुरु दर्शन, सेंसेस फेल है, जीव होश में भी नहीं है संसार के, लेकिन प्रभु संग दे रहे हैं। कि जिसने प्रभु की भक्ति की है, जिसने प्रभु को याद किया है प्रेम से, जिसने प्रभु से अपना संबंध स्थापित किया कि महाराज जी का नाम सत्संग में नहीं आ रहा तो उनको सत्संग नहीं अच्छा लग रहा, कैसा गुरु प्रेम है। इसीलिए पूर्ण गुरु वो कभी खत्म नहीं होता, याद रखो, गुरु नहीं मरता कभी। यदि गुरु मर जाता तो महर्षि रमण कभी नहीं कहते गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर। इसलिए चाहे रामकृष्ण परमहंस पर श्रद्धा हो, चाहे महर्षि रमण पर श्रद्धा हो, चाहे महाराज जी पर श्रद्धा हो, चाहे गुरु नानक पर श्रद्धा हो, लेकिन श्रद्धा पूर्ण हो और उसने जो मार्ग बताया है, उसने जो वाणी ज्ञान प्रकट किया है, मैं उसको यदि सीखता हूं, उसके हिसाब से चलने की कोशिश करता हूं, तो गुरु मेरा फिजिकली मौजूद है। तो इसीलिए दो तरह से ईश्वर का संग दिया जाता है, एक बाहरी संग वो गुरु के रूप में होता है, एक अंदर संग वो अंतर्यामी ईश्वर है, तो तेरी असली भेंट ईश्वर से अंदर होगी। तो इसीलिए गुरु का मंत्र होता है, गुरु का मंत्र भी याद रखिए ईश्वर होता है। इसलिए महर्षि रमण उसकी भी व्याख्या कर रहे हैं कि वो कहते हैं गुरु मंत्र, मंत्र का मतलब केवल गुरु मंत्र, आपका मनमाना नहीं, मंत्र गुरु आत्मा कुंडलनी एक चीज है, कुंडलनी ईश्वर का वो रूप है अंदर जो आपको अनुभव होता है, जो आपके प्राणों का प्राण है, जिससे आपकी श्वास उदय होती है, प्राणस्य प्राण उपनिषद कह रहा है, वो प्राणों का प्राण है, तेरी श्वास उसके कारण चल रही है, वो तेरा अंतर्यामी ईश्वर है। इसीलिए वो जो है अंदर का गुरु है, तूने उस गुरु तक पहुंचना है, तो अंदर के गुरु पहुंचेगा कैसे, जो बाहर गुरु प्रकट हुआ है, जिस पर तूने विश्वास किया है, उसकी आज्ञा को, उसके मंत्र को, उसकी उपासना को सीखा है, तो जब तू मौन होकर उसकी आज्ञा अनुसार अंदर उस प्रभु की याद करता है उस मंत्र के रूप में, क्योंकि मंत्र भी उसी प्रकार ईश्वर का अवतार है जिस प्रकार गुरु की देह ईश्वर का अवतार है। गुरु की देह गुरु नहीं है, गुरु तो परमेश्वर है जो उसके उस शरीर के द्वारा गाइड कर रहा है, वह जीव सत्ता ईश्वर सत्ता में विलीन हो चुकी है। इसलिए माली कह रहे प्रेम ये आत्मलीन अवस्था है, आत्मलीन अवस्था में जीव की सत्ता खत्म हो जाती है, वो तो मुक्त हो गया, अब उस शरीर से ईश्वर काम कर रहा है। इसीलिए वो ईश्वर जब मंत्र देता है, ये महामंत्र जो है ये ईश्वरीय मंत्र है, ये वाणी में आया है, त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाया, कलह कलेश सब दूर होए पाए ज्ञान तत् योग मंगत तत् अक्षर नित गाइए प्रभु दर्शन होए से। जो प्रभु वाणी को गारंटी ले रही है, तू मौन होकर इसका जाप कर, उसको ऐसे मंत्र समझ के नहीं, ये अंतर्यामी ईश्वर है, ईश्वर मेरे लिए मंत्र रूप में उसने अवतार लिया है, तो मैं प्रभु का संग कर रहा हूं, इस भाव से जाप करिए, आपका असली भक्ति होगी, और ये जो मानव जन्म मिला है और जो ईश्वर के संबंध मैंने स्थापित करना था, जो संसारियों की नकल करके मैं माया के अंधे में फंस गया, ईश्वर मैंने छोड़ ही दिया, तो पूर्ण गुरु पर भरोसा करिए, पूर्ण गुरु की संगत पर भरोसा करिए, उनका संग करिए, बड़े भाग्य से ऐसी जगह में पैदा होते हैं जहाँ पूर्ण गुरु का समाचार मिलता है, पूर्ण गुरु की संगत मिल जाती है, उनके शिष्य मिल जाते हैं, उनका मंत्र मिल जाता है, इसका मुझे फायदा उठाना चाहिए, मानव जीवन सफल करना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्य सत्य।